पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो फिर वो यहां आई दीक्षा ली, कहते जब पीछा छूटे उस सच्चा भूत थे और न सामने बोलता कि तुम खेत में नहीं गए आज, और तुम्हारा पानी का नंबर था वहां कैसे क्यों नहीं गए, हैं नाश करोगे। और वो सारी कहता एक आधी बार उसने ऐसी बात भी बताई जो हमारे ठीक लगी, लेकिन दुखी गणे कर दिए, बीडीपी वह काम करने दे नहीं, रोज चुरमा कितने लिया उसके लिए। वहां के ये भूत बन गया शिवदयाल जी फाइनल हुई। जब इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संचालक ही प्रेत बन गया तो बाकी के बनेंगे क्या बनेंगे उसी साधना से। अब गणी कहण की जरूरत कोई ना, समझण की आवश्यकता है। अब जैसे आज आपको दास ने सत्संग में सुनाया कि हमारे जो एथेंटिक रिकॉर्ड है, एथेंटिक सदग्रंथ है, मान्य प्रमाणित दो सदग्रंथ है, हमारा आध्यात्मिक दो सिलेबस है, वो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और सबसे पहले है पवित्र सूक्ष्म वेद, जो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देते हैं, वो कबीर वाणी, कबीर साहिब का ज्ञान। तो कबीर साहिब का एक कबीर सागर, परमात्मा ने इतनी वाणी बोलो बोल दी, धर्मदास जी लिखे गए कि उसमें से वो रियल मैटर निकालना बालकों का खेल, सागर हो गया समुद्र में से मोती और हीरे तो गोताखोर ला सके। तो इस दास पर दया करी, दास को परमात्मा ने मुरजीवा बनाया, गोताखोर बनाया और इस कबीर सागर में से ये हीरे मोती निकाल लिए, जो आज आपका बखेर रहा हूं, आपको बांट रहा हूं, इनको मिले नहीं है। और ये राधा स्वामी वाले क्या कहते थे, पहले इनसे डिस्कस हुआ करती इनके चेलों थे, तो कहते थे वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी ने, गीता भी तो व्यास जी ने लिखी, वो भी तो इंसान थे, पुराण भी तो इंसान ने लिखी है। देखो अपना संविधान है हिंदुस्तान का, वो श्री भीमराव सिंह जी अंबेडकर जी ने लिखे और वो विधान बन गया और सबको मान्य है, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो कोई ये कहे कि हम अपना विधान हमारे गुरुजी ने बना दिया, हमारे नेता ने, और हम तो इसने मानेंगे, वो भी तो किसी ने लिखा है, तो उसमें कितनी अकल होगी उस इंसान के अंदर जो ऐसी बकवास करता है। तो इनकी ऐसी ही बकवाद समझ लेना जो ये कहता है कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं और गीता भी तो किसी ने लिखी है, हमारे परम धनी ने जो बोला है ना ज्ञान, हम तो उसी को भी विधान मानते हैं, उनका सत्य ज्ञान है। किसने? श्री शिवदयाल जी ने। अब शिवदयाल जी का ज्ञान सुनाता हूं आपको, सुनिए जानते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये प्रकाशित है। अब सीधा आपको यहां ले चलते हैं, यहां ले आते हैं, ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब, ये 16वां संस्करण है। पहला संस्करण 1961 में छपा था, इन्होंने सोची ताजी बना रखी है, 1961 से चली आ रही है और ये यहां से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। भूमिका, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद, परम धाम लेकिन उन्होंने बोले बुक्की में जाने के बाद, वो तो बुक्की में बैठा रहा जब तक बुक्की ना मेरी। अब देखो, स्वामी जी के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद यानी उसकी मृत्यु के उपरांत इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया था सन 1902 में। ओए सन 1902 से चल रहा है ये। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह ने पहली बार गुरमुखी लिपि में बनवाया। देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रमुख गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब ये देवनागरी लिपि में होगी, इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये वाला स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान ध्यान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश यानी नाम देना शुरू किया 1861 में। और आगे देखियो ये क्या कहते हैं। देखो, इन्होंने ऐसे भ्रमणा फैला रखी है कि कबीर साहब भी वो साधना करते थे, गुरु नानक देव जी भी साधना करते थे, दादू जी भी यही मंत्र जपते थे, जैसे शिवदयाल जी जपते थे यही साधना करते थे। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने ये मान लिया कि यही होगा फिर, जब सारे संत भी यह साधना करते थे और हमारे शिवदयाल जी भी यही करते थे, हमें भी वही प्राप्त है, तो ये निश्चिंत होकर बैठ गए। अब परमेश्वर कबीर जी क्या साधना बताते थे, नानक साहिब जी क्या साधना, कौन सा मंत्र जाप करते थे, वो आपके रूबरू दास ने बहुत बार कर लिए और समय आने पर करते ही रहेंगे। तो उससे तुलना करनी पड़ेगी कितने झूठे हैं और गलत साधना करके अपना जीवन नाश कर गए हुए और करोड़ों को और डबो दिया। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि सन 1861 में ये नाम देने योग्य हुआ और बाबा जयमल सिंह को नाम मिल लिया 1856 में, 6 वर्ष पहले, जब तक तय नाम देने जोगा भी ना हुआ था। इनके विचारों से देखिए, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। यह आपके पिताजी का नाम। फिर क्या है, यह लिखा है कि इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए भक्ति के चक्कर में और उनसे सन 1856 में नाम प्राप्त किया, नाम दान। और ये 1861 कहते हैं, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया, नाम जाना चिन्ह 1861 शुरू किया, जब तक ये अंडर ट्रेनिंग था। और 1856 में बाबा जयमल सिंह जी को ये नाम मिल गया। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए के ख्याल से सन 1856 में ये फौज में भर्ती हो गया। 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी करी कर ली और 32 वर्ष तक सेना में रहे। 32 वर्ष तक नौकरी करने के बाद 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब देखो सन 1856 में नाम लिया, 32 वर्ष फौज में सर्विस करके 1889 में बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा बना लिया ब्यास में, और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी 60 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष के बाद फिर आप पे नाम देने लगे। तो कहने का भाव ये है दास का कि पहले तो उनका कोई गुरु नहीं था और फिर वो मर्यादा इनके पास वो भी नहीं कि गुरु इसके आदेश से आगे नाम देना शुरू करे। होना तो फिर भी कुछ नहीं था, फिर भी इनकी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। राधा स्वामी ने यो एक पंथ जोड़ा, ये दिखाना चाहता। अब इनका अब देखिएगा, फिर बाबा जयमल सिंह के बाद राधा स्वामी सार्वजन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हम, और पृष्ठ नंबर हम 7 पर आ जाते हैं, 6 पे तम पढ़ ही रहे थे। ये लिखा के सन 1889 में पेंशन हुए और ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू कर दिया। ठीक, फिर क्या बताया है प्रश्न नंबर 7 पे कि आप अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन बनाया, जान सीन यानी उत्तराधिकारी। ठीक है, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है, और फिर इन्होंने नाम प्राप्त किया, हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज दाम से ले गए यानी इनकी मृत्यु होगी। उससे पहले 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह जी को सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिया। अब इससे इतना लेंगे और अब दिखाते हैं जो सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर श्री खेमा मिल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने वहां पर डेरे की स्थापना की, और वो किसके शिष्य थे, सावन सिंह जी के शिष्य थे वो बाबा खेमा मिल सिंह जी। दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का केवरंतांत, कृष्णों के वृंतांत, और इसने किसने छाप्या है, ये पहला भाग है। संग्रह करता है परम पूज्य महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ये, और ये सारा नो का नो सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृतांत का लाभाग संग्रह करता, यानी गुरमीत सिंह जी ने इसको संग्रह करके छपवाया है डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। और यहां देखिएगा छपा कहां से है, मुद्र के इंद्र सेन प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। ये है प्रकाशक, प्रकाशक मुद्रक यहां पर है, मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा बिग रोड सिरसा हरियाणा से। अब इसके हम आपको 27 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये हैं श्री सामस्ताना जी यानी खेमामल जी, परम संत सामस्ताना जी महाराज, इनका सही नाम श्री खेमामल जी था। परम पूजनीय बेपरवा मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवा मस्ताना जी गांव कोटड़ा तहसील गंदेह रियासत कुलैत बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो कि अपने गांव के साहा जी यानी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। ठीक, संवत विक्रमी 1948 सन 1891 कार्तिक की पूर्णमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश के से संबंध रखते थे, ठीक। अब 25 पृष्ठ देखिएगा, वो 27 पृष्ठ था, ये 25। पूज्य बेप्रभा मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूज्य पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साह कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब 26 पृष्ठ पर देखिएगा, वो प्रारंभ 24 पृष्ठ था, ये 26 अब आया। परंतु आपको किसी से भी कुछ नहीं मिला, सब जगह घूमेगा में। फिर कहते हैं अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी के मन को संतुष्टि व आध्यात्मिक शांति महसूस हुई, आध्यात्मिक शांति। जब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना तो आपको पूर्ण तसल्ली हो गई कि पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं, इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। और नाम दात के साथ ही हजूर बाबा जी ने आप जी को अनंत बरकतें बख्श दी, ठीक। आखिर बेप्रवाह मस्ताना जी, ये 26 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, महाराज जी अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने सतगुरु बाबा सावण जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा सावण सिंह जी ने आपको नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक तो आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1848 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखना, अब इसमें क्या कहा है कि सावण सिंह जी ने इस बलोचिस्तानी सावस्ताना बाबा जी को नाम प्रचार करने के लिए भेज दिया। नाम प्रचार करने भेजा होगा, नाम देने नहीं भेजा था। आगे देखो, अब 1848 में उनकी मृत्यु होगी सावण सिंह जी की, और 1848 में डेरा स्थापित करने लग रहा है। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे, बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू किया था। 2 अप्रैल 1948 में सावण सिंह जी मर गए, मृत्यु होगी इनके गुरु जी की, और अप्रैल 1949 में एक वर्ष बाद ये संगत के कहते हैं और बलोचिस्तानी सावस्ताना जी नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि सावण सिंह जी का भी आदेश इसको नाम देने का नहीं था। अब कितने तक कड़ी जुड़ी होती न कर्ण नराव जाता, यूं तो जुड़ रहा था। वैसे तो जब शुरू में खत्म है तो बाकी कुछ चलेगी नहीं, फिर भी इनकी सारी हिस्ट्री बता देते हैं कि सारा ही ये डामाडोल पंथ है। अब दास का उद्देश्य उनकी निंदा करना नहीं है, वो बोले श्रद्धालु जो उनके बैठे उनके पास, उनको सतर्क करा हूं कि आप जिस नौका में बैठे हो या डूबेगी और ये हमारी खड़ी अकति केस में आ जाओ, थारी जीवन रक्षा होगी, इतनी सी बात। अब आगे देखिएगा, अय है पुणात्मा, अगर जरा से भी कुछ ध्यान से सोचेगा कलेजा हिल जाएगा इंसान का। दास का उद्देश्य क्या है ये देखिएगा, ये पृष्ठ है 30 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक। अगले दिन 17 अप्रैल को बेप्रवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर घुमाया और कहां ले गए, उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए। कब्रों पर टिंडे लेने गए, बता भक्ति कब्रों पर जाने की होती है, क्या दिखाने ले गए संगत को। देखिए, निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए और रात को वहीं पर सत्संग भी किया। अब यहां देखना कमाल की बात है, खेमा मलजी यानी बलोचिस्तानी सामस्ताना जी सच्चा सौदा सिरसा का प्रवर्तक अब क्या बोल रहा है। सावण शाही मौज ने यानी मेरे गुरुदेव जी ने इस गरीब मस्ताने की बॉडी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी नहीं समझा और कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नाम दान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब मैं हम नाम शब्द सतनाम जी की बॉडी में बैठ कर देंगे। हो अब देखियो पुण्यात्मा कलेजा फट जाएगा आपका, तो वह तो नशा कर रहे हैं, जो बांग का नशा पी रहे ज्ञान का, जो इनका फंस रहे हैं। अब ये के कह रहे बलोचिस्तानी सामस्ताना कि मेरे तो सन 1948 में सावन सिंह जी की मृत्यु होगी, 1948 में उसमें प्रवेश कर गया भूत बनकर। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष 1960 में इसकी मृत्यु होगी बलोचिस्तानी सामस्ताना की, आगे दिखाऊंगा। ये कह रहे हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के 12 वर्ष तक सावन सिंह जी ने मेरे अंदर बैठकर ये नाम दान दिए हैं और ईब में उसका उनके चेले हुए सतनाम सिंह जो दूसरे अधिकारी इस गद्दी सरसावाड़ी के। अब कह रहा है कि मैं सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करके भूत बनकर बढ़ूंगा और उसमें नाम दिया करूंगा। देख लो फिर पढ़ देख पे। अब क्या कह रहे हैं कि सावण शाही मौज ने सावण शाही यानी सावण सिंह ने मेरे अंदर प्रवेश करके इस गरीब मस्ताना की बॉडी में 12 साल काम किया है, परंतु किसी ने भी नहीं समझा। फिर किसी ने कहा जी मुझे किसी ने नाम मांगा तो ये क्या कह रहा है कि आपने स्पष्ट कर दिया शब्दों फरमाया कि भाई अब हम नामदान सतनाम सिंह जी की बॉडी में बैठ कर देंगे यानी उसमें प्रवेश करके बोलेंगे, उसमें पढ़ूंगा मैं, मेरे पास है सतनाम सिंह में प्रवेश करूंगा। ये देखो 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः सुबह जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठाया और बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। फिर भी इस पर बेपरवाह जी ने कहा कि इस वक्त उसे डॉक्टर कहाँ है, इस पर उसी वक्त उसे उससे कहा कि डॉक्टर कहाँ है, अरे तुम क्या समझा सकते हो इस शरीर को ऐसे। अब क्या हो गया, अब 31 पृष्ठ पर देखो, 31 पृष्ठ पे अब क्या कह रहे हैं कि बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज और एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान था, 3-4 और प्रेमी थे। अब वहां चले गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर से बातचीत हुई, इतने उसने कितनी देर हंसते हंसते आपसे बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। अब वहां बीमार थे, डॉक्टर ने कहा जी इंजेक्शन लाना पड़ेगा, तो इन्हें खेमामल जी ने कह दिया लगा दो, उन्हें इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने रिएक्शन कर गया, ये मर गए, ये परम धनी की मौत होगी। देखो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही वहीं बेंच पर लेट गए स्वामी बलोचिस्तानी जी और तलियों में जलन का बहाना करके इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, सारा खाज माच गई और धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में समा गए। यो तो कह रहे हैं कि मैं ही बाऊंगा सतनाम सिंह की बॉडी मुड़ूंगा और ये नौके अनामी लोक में चले गए। ठीक और देखो आगे, यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए और वह बहुत अक्का रह गया। अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इंजाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सोच रहा था वह, अब क्या करे। डॉक्टर की यह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उनसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, ये तो संत महात्माओं का अपना ही लेखा होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार किया। ठीक हो गया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, अब ये देखिएगा। इसी पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 32 पृष्ठ पे आगे 32 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो ये थी बेपरवाजी, यहां डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते। अब चोला बदलने का अर्थ क्या होता है कि एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म मरण में आना, इनके वचनानुसार जो इन्होंने लिख रखा है। ये आप मानते हैं चोला वो छोड़कर दूसरे चोले में बदल गए और कह रहे हैं उसमें सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करेंगे। अच्छा, अब यहां देखिए 33 पृष्ठ पे, अब यहां क्या लिखा है, डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र करकमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी, और 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मौत होली। इनको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु होगी कि ना होगी। फिर अप्रैल 1949 में संगत के कहने से नाम देने लगे, और उसके बाद अब इनकी क्या दशा हुई, श्री सावन सिंह जी 5 देते थे, इन्होंने नाम भी बदल लिए, 3 देने लगे, कालमुर सबस्वरूपी राम और सतपुरख। ये किसी खाते के नाम नहीं, ये तो भगवान के नाम है, यानी उपमात्मक नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करें जाओ, अकाल मूर्त का वही अर्थ है जिस साकार भगवान की मृत्यु ना हो, और सतपुरुष का अर्थ अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड होता नहीं वो अविनाशी परमात्मा। तो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सतपुरुष कहो एक ही बात, ये पर्यायवाची शब्द है, और उसको तो हमने पाना है, अकाल मूर्त को शब्द स्वरूपी राम को तो पाना है। जैसे जल है, जल पानी नीर कहते रहो, तो जल पानी के जल से काम बनेगा, वो मिलेगा कैसे, जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, उसके प्रोसेस न्यारा है। तो ये मंत्र हैं, प्रथम मंत्र सतनाम मंत्र और सारना मंत्र, ये उस अकाल मूर्त को पाने का प्रोसेस है। जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी, पाइप लगानी और फिर ऊपर हैंडपंप लगाना, तो पाइप बोकी मार के मट्टी निकाल के पाइप नीचे पहुंचाना, ये तो सतनाम का काम है। जो दो अक्षर का नाम है जिसमें एक ओम है और एक तत् है, तो ये श्वास उस श्वास की बोक्की मारनी पड़ेगी आपने, और केवल सतनाम से भी बात नहीं बने, क्योंकि बोक्की ने तो काम कर दिया, पाइप चलेगी पानी तक, मिला नहीं, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, उस हैंडपंप से फिर हिलाएंगे, उसकी भी साधना करनी है, तो उससे जल मिलेगा। तो सारनाम सतनाम तो बोक्की समझ लो और पाइप, और सारनाम है वो ऊपर की मशीन हैंडपंप, और उसकी भी फिर हिलाना पड़ेगा, जब वो जल पानी नीर अकाल मूर्त प्राप्त होगा वो सब स्वरूपी राम मिलेगा। और ये 3 देने लगे ऐसा भगवान मिलेगा, तो ये सब भूले फिरे हैं। दास का उद्देश्य है कि पुनर्विचार करें और फिर अपना जीवन सफल कराएं। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है उस अकाल मूर्त के पाने का, उस सतपुरुष के पाने का, आओ ग्रहण करो। अब इनके बाद क्या है, इनके दूसरी गद्दी वाले हैं श्री सतनाम सिंह जी, ये हैं सांस, ये देखिएगा सहनसाओं के सहनसा पूजनीय परम पिता साहस सतनाम सिंह जी महाराज के पावन जीवन की झलक। ये हैं श्री सतनाम सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा यासरा। ये हैं श्री सतनाम सिंह जी, परम पिता साहस सतनाम सिंह जी महाराज। ठीक, इनका यहां से शुरू होता है 34 पृष्ठ से, सहनसाओं के सहनसा कुल मालिक परम पिता साह सतनाम सिंह जी का इस मातलोक में शुभ आगमन 25 जनवरी 1919 में शनिवार को गांव दलालाना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा में हुआ। आप सिंधु वंश के संबंध रखते थे। ठीक, अब हम आगे आते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 50 पे देखिएगा, पृष्ठ नंबर 50 पे आप जी ने 18 अप्रैल 1963 से और 26 अगस्त 1990 तक 27 वर्ष 24 महीने तक 11,08,429 जीवों को नाम दान किया। कितने में? 27 साल में 11,08,429 जीवों को नाम दिया। कब से? 1963 से लेकर 1990 तक, यानी सन 1960 में श्री मस्ताना जी की मृत्यु होगी, तो 3 वर्ष कहां गए वो बीच में, इनको नाम देने का अधिकार भी वो दे नहीं पाए, अचानक मृत्यु होगी। फिर भी आगे देखो, अब हम यहां पढ़ेंगे 53 पृष्ठ पे, 53। अब यहां लिखा है कि आखिर वह दिन भी साध संगत को प्रदान देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 शुक्रवार को कुल मालिक दो जहानों के वाली परम पिताजी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिता जी की मौजूदा सरकार संत गुरमीत सिंह जी के स्वरूप में, यानी नौजवान बॉडी के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अब ये कहें, दास नहीं कहता कि सतनाम सिंह जी गुरमीत सिंह में प्रवेश कर गया, अब उसमें बैठ कर बोल रहे हो उसका मौज करे। फिर पढ़ लो, ना सुन भाई। देखो, आखिर वह दिन भी संगत को साध संगत को देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 को इनकी मृत्यु होगी और उसके बाद ही कुल मालिक दो जहान के वाली परम पिताजी ने सतनाम सिंह जी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिता यानी सतनाम सिंह जी मौजूदा सरकार संत श्री गुरमीत सिंह जी के स्वरूप में, यानी नौजवान बॉडी के अंदर उस गुरमीत सिंह के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अब देखते जाना इनका ये केस सर पर है इनका। इसे सिद्ध हो गया कि सतनाम, अब वो तो खुद कह ही गए कि मैं सतनाम सिंह में आऊंगा, और मेरे सामस्ताना जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर 12 वर्ष सावन सिंह जी रहे, अब मैं जाऊंगा सतनाम सिंह में। अब सतनाम सिंह को कह रहे हैं गुरमीत सिंह में आ गए भी। आगे देखो, और फिर ये क्या कहते हैं, ये है श्री गुरमीत सिंह जी हजूर, श्री हजूर महाराज मौजूदा सरकार दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज जी का जन्म 15 अगस्त सन 1967 मंगलवार को गुरुसर मोड़िया जिला श्री गंगानगर राजस्थान में एक उच्च घराने में हुआ। ठीक है, यहां देखिए, परम हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि सैनसा मस्ताना जी के का पाठी रह चुका है, ने सैनसा मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि सैनसा मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी को भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला, तो वे सन 1860 में फरमाए वचन कि 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब ये क्या कहना चाहा इन्होंने, अब ये स्पष्ट करना चाहा है, सिद्ध करना चाहा है कि श्री सा मस्ताना जी स्वयं एज ए गुरमीत सिंह जन्मे हैं, तो उनकी मुक्ति कहां हुई, अभी तो वो जन्म मरण के अंदर ही है। अब आपके सामने दास ने अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोला, इनकी पुस्तक पढ़ाई है। अब इनकी ये दशा होनी थी, किस लिए? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। जिस साधना के करते करते शिवजाल जी प्रेत बने तो बाकी का के बनेगा, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, समझण की जरूरत है पुण्य को। अब इन राधा स्वामी पंथ वालों की थोड़ी सी ज्ञान की झलक दिखा दूं और इनके नाम दिखा दूं, ये कौन से नाम जप हैं। सच्चा सौदा सिरसा वालों का बताई दिया, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, और शिवदयाल जी कौन सा नाम जाप क्रिया करते, ओंकार ररंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। सतनाम भी इनका एक नाम है, पांच नाम जाप करते। और तुलसीदास आथर्स वाले कहते पांचों नाम काल के जानो, ये पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, पांचों नाम जीव जब भाख्या और छठवां नाम गुप्त जब राख्या। यानी उन पांचों से नाम आगे, इन पांचों से अलग एक और नाम है छठा, और फिर आदि नाम उनसे भी नारा है। देखिएगा पहले घट रामायण तुलसीदास जी वाली सुनाते हैं, और ये पहला भाग ये घट रामायण है तुलसीदास साहेब हाथरस वाले की रची हुई, और ये यहां से छपी है। इसके 27 प्रश्न आपसे पढ़ाते, थोड़ा सा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये पांच नाम जाप करने वाले थे, इनका ये 27 प्रश्न है पिंड भेद और ब्रह्मांड का। अब क्या करे, अंतर गुफा तांचल जाऊं तां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, पांचों नाम जीव जब भाख्या और छठवा नाम गुप्त कर रख्या। पांचों नाम जीव जब भाख्या बोलिया और छठा नाम तो गुप्त कर रख्या। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम तो काल के हैं। और निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म रायो पांच बखानी, जीव नाम निज कह बिचारी और जान बूझ दानी झकमारी। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, पांचों नाम जीव जो बाका छठवा नाम गुप्त कर रखे। इन पांचों से नारा एक छठा नाम है। और देखो जीव वचन, दानी सुनोविद बात हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। होय होय, आदि नाम ये न्यारा है, और सत नाम ले जीव उभारी, और अस्तल जाऊं पुरुष दरबारी। उन पांच नामों से अलग हैं ये है वो नाम। आदि नाम तो सार नाम है, सत नाम ये दो अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् आपको दिया जाता है। तीसरे है पांचों नाम के बाद ये दो मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, और ये पांचों नाम तो जो रंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये तो काल के हैं। और ये सिद्ध हो गए कि श्री शिवजाल जी भूत बढ़ गए इन नगा जाप करते करते, और वही ज्ञान वही नाम नो का नो सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और वही ज्ञान जय गुरुदेव जी ने जो मथुराम चलाया तुलसीदास जी ने, वो तुलसीदास जी अलग थे, और ये तुलसीदास जो हाथरथ वाले थे ये कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते। इनको ये तो पता लग गया भगवान की वाणी पढ़ तक आदि नाम अलग है, सतनाम न्यारा है, और वो पांच नाम तो काल के हैं। इसको भी नहीं पता था आदि नाम कौन सा और सतनाम कौन सा है, इस आथर्स वाले को भी नहीं पता था, लेकिन परमात्मा की वाणी से पढ़कर इसको इतना जरूर महसूस हो रहा था कि वो दो नाम और हैं। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि पांचों नाम काल के, रुष्ट छठा सतनाम, उससे नारा फिर आदि नाम और है, उनसे मोक्ष होगा। अब ये इनका ज्ञान कैसा था, ये कहते हैं ना हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान बोल दिया हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, वो अभी तो किसी ने बोल ले और लिखे हैं। इनके गुरुओं का ज्ञान सुनाता हूं, दो मिनट लगेंगे। देखिए ये सार्वचन वार्तिक राधा स्वामी वार्तिक वही की वही, और ये कहां से छपी है, ये कहां से छपी है दिखाता हूं। ये वही है, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और 1961 में पहला संस्करण हिंदी में 1961 में लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली से छपा है, यहां से यह भी हुई है। इसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि ये वचन जो है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इसका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 से चली हुई है, ये आज की नहीं है। सन 1902 112 वर्ष हो गए। 1909 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये वाला स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। अपने आत्मा जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इनके घर पर होया करता। इनके माता पिता के गुरु जी थे तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी घटरायण दास ने पढ़कर सुना दी 500 नाम काल के जानो। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में अगर ये मंत्र होता सतनाम नानक साहिब जी वाला, जो समुद्र की साखी में वो खुद उच्चारण करके मर्दाना को सुनाते हैं और फिर उनको झटका देते हैं, ये है वो सतनाम दो अक्षर का। अरे न कह भी नहीं पता, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये नाम होता तो ये नकली भी ये नाम देते पाते तो आज दास कैसे सिद्ध करता कि ये नकली है, क्योंकि इनको अधिकार है नहीं, इनका कोई गुरु नहीं। और ये नाम ये देते होते तो सब ये कहते हमारे गुरु जी भी तो वही मंत्र देते दो अक्षर का। तो पुणात्मा मेर करी परमात्मा ने और सभी महापुरुषों ने उस ऐसे अनमोल खजाने को छुपा कर रखा जो आज खोलना था। ये सारे फेल होंगे, देख लेना। अब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होया करता है, खुद भी पाठी था और खूब इसने अध्ययन किया, उसमें वो नाम थे नहीं। पांच नाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। नानक साहिब की वाणी है कि वो पांच प्रधानों के जो हमारे शरीर में कमल बने हैं, इनमें प्रत्येक का एक एक कमांडर है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी और नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी और कंठ कमल में दुर्गा। तो ये पांच प्रधानों के नाम थे जो दास आपको देता, ये है असली नाम। और इन्हीं की धुन होती है, जब ये शुरू हो जाएंगे आपके खुल जाएंगे कमल, इनकी धुन अपने आप नारी नारी बाजती चली जाएगी प्रत्येक स्थान पर जहां इनका मूल स्थान है। अब जैसे कोई भी जो समाज प्रोग्राम है उनके हेड ऑफिस से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सुन रहे हम टेलीविजन में, और वहां जाकर देखेंगे तो वहां भी वो रियल में तो वहां उनके मूल स्थान पर भी है, वहां भी आवाज आ रही है। तो जब आत्मा निकलकर शरीर से चलती है तो उन मंडलों से गुजरती है, इन्हीं के हिंद प्रधानों के मंडलों से होकर जाती है। लव धुन सुनेंगे, खाक धुन सुनेंगे, तुम नाम तो पांचों काल के जाप कर रहे हो, बस धुन भी ना सुने तुमने जो सुननी थी। अब जैसे ढोलक बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है स्पेसिफाइड, और उसको बजावेंगे तो ढोलकी की आवाज सही आवेगी, जो ताल में सुर मिलावेगी, और जब उसका जूता मारने लग जाए आवाज तो फिर भी आवेगी, फिर वह सुर में सुर नहीं मिला सकती। ते पांचों नाम जो नाकाल के जाप करके दो धुन सुनते थे, वह तो वह थी ढोल का जूता मारने वाली, वह असली धुन इनको वह भी ना सुनी। अब क्या लिखा देखिएगा नीचे पांच पृष्ठ पर भूमिका के हम पढ़ रहे हैं। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के श्रेष्ठ भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और 17 वर्ष डलेड होकर 1861 तक तो इसने के ज्ञान बताया। ये वाक्य सुनाएंगे आपको, अब यहां जाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं 13 नंबर पृष्ठ पे, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, शिवदयाल जी के उपदेशों का यानी सत्संग का खुलासा है। ये वचन नंबर एक, दफा नंबर एक। अब सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपने सूरत यानी रूह को इसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। ये यहां पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी भी मुकाम माने स्थान, सतनाम को स्थान बोल रहा है, देखो पहुंचावे। ठीक, अब दूसरा वचन, तीसरा, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले, और सिर्फ संत पांच मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर। अब क्या हो गया, अब क्या कहते हैं, पांचवी मंजिल सतनाम और बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। होगी मंजिल, मंजिल माने ये अपन बता रहे, मंजिल माने स्थान। अब यहां कहते हैं मंजिल, मंजिल सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम स्थान पर हो गया स्थान सिद्ध। अब यहां देखो वहां पहुंचे। अब पंद्रह पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है। अब देखो अकल देखो इनकी। कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है और प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली है, इनका कहने का ये तात्पर्य। अब देखो फिर क्या कहते हैं कि यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है, और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का मुकाम, सतनाम को स्थान वाला मंजिल सिद्ध कर रहे हैं, सतनाम को पीछे इन्होंने मंजिल और मुकाम सिद्ध किया, पांचवा स्थान मंजिल सतनाम है। अब कहते हैं उस राधा स्वामी से पंथ दो राधा स्वामी धाम से दो पद नीचे, दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है।
बहन जी नमस्कार।
नमस्कार सत साहेब।
क्या शुभ नाम है बहन जी आपका?
मेरा नाम समझना काफले, नेपाल से।
बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं वही परंपरागत साधना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश की साधना।
बहन जी ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की आप साधना करती थी, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
कुछ नहीं, उससे कहूँ तो कुछ भी नहीं मिला था।
बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
परम संत सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में मैं कैसे आई ये कहने के लिए थोड़ा मुझे अपने कहानी पर जाना पड़ेगा। बचपन से मेरे घर में जो तनाव झगड़ा वो गरीबी देखती थी, मेरे पिताजी जो शराब पीते थे बहुत ही, और मेरे घर के गरीबी हालत, इन सब के कारण मैं बहुत दुखी होती थी और घंटों भगवान के फोटो के सामने जाकर रोती थी, वो मंदिर जाती थी फिर भी भगवान के सामने बैठकर रोती थी और बोलती थी कि भगवान आप कहाँ हो, यदि हो तो आ जाओ और हमारी मदद करो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान आए और मदद किया, और हमारे घर में दिनों दिन बद से बदतर होती हालत होती गई, झगड़ा गरीबी इन सब। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई तो मैं काठमांडू आ गई। उसके बाद इधर घर में मेरे बड़े भाई साहब जो राम कुमार काफले उनका नाम था, हाल में वो भक्त रामदास हो चुके हैं, ने पिताजी का वही जगह ले लिया। वो पशुओं की तरह हो गए, रात दिन शराब पीना, मांस मछली, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा ये सब खाकर घर में झगड़ा करना और घर को नर्क मनाना, जैसे कि माहौल नर्क हो गया। सुनती थी तो बहुत दुख होता था, फिर भी उस समय भी भगवान ही खोजती थी, बोलती थी कि भगवान अगर तुम हो तो क्यों नहीं हमारे मदद करते और आते। उस वक्त भी बचपन से जवान होने तक और बड़े होने तक भगवान की ही तलाश और व्रत और उपासना ये सब बेकार हो रहे थे। और एक दिन वैसे ही मैं सुनी कि मेरे बड़े भाई साहब राम ओ बरवाला आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला आ गए और मंत्र उपदेश लेके चले गए संत सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की चरण कमल से। तो उसके बाद वो सुधर गए हैं, बदल गए हैं। लेकिन मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैंने देखी थी कि वो इस हालत में थे कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी वो बदलते हैं। और फिर भी दिन हफ्ता महीना हो गया और मैं सुनती रही देखती रही कि वो बदल गए हैं। मैं विवश हो गई उनकी घर की आर्थिक हालत देख के और उनका सुधरा हुआ हालत देखकर मुझे विवश होना पड़ा कि क्यों और कैसे हुआ क्या हुआ। उन्होंने बोला था जब से वो सुधर के आ गए तो हमेशा से हमें बोलने लगे कि मैं तो भटका हुआ था, अंधेरा में था, सचमुच में वहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद में शक्ति है, वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझ जैसे को सुधार सकते हैं। और तुम लोग भी जाओ, क्यों भटक रहे हो, देखो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, वही होगा और कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है, तुम लोग जाओ, देख तू तो समझती है मुझे, तू जा, ऐसे करके मुझे बोलने लगा। क्योंकि उसके बात कर कोई विश्वास नहीं करता था, बात भी वैसे ही था, उन्होंने बनाया ही वैसा था माहौल। फिर उन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और कुछ सीडी को भेज दिए। तो मैं शुरू में पढ़ने लगी, देखने लगी, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर दोहरा तेरा कर देखने लगी तो कुछ समझ में आने लगा। और धीरे धीरे 5-6 बार देखने से पता चला कि कुछ बात है इसमें, तो मुझे अच्छी लगी और ऐसा लगा कि शायद वहां पर मुझे जाना ही चाहिए। तो मैं बरवाला आश्रम आ गई। मैंने 22 मार्च 2011 में नाम उपदेश ले लिया। पहले मेरे पति ने आके 3 महीने पहले आके नाम नंद ले लिया। फिर उसके 3 महीने बाद मैं और मेरे 73 साल की सास हैं, वो दोनों ने साथ में आकर नाम लिया।
बहन जी, पहले आप बहुत दुखी थे, मानसिक भी, आर्थिक हालत भी खराब थी, घर में क्लेश भी रहता था। फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
उस भक्ति से मिली हुई लाभ का तो मैं बयान ही नहीं कर सकती थी। सबसे पहले बात तो मेरी जो बचपन की तलाश थी कि परमात्मा भगवान कहाँ है कि नहीं है, तो कैसे है, कैसे आते हैं, वह कैसे मदद करते हैं, तो ये बात मेरी सही बन गई कि भगवात्मा सचमुच में हम जैसे ही है, इंसान के रूप में है, और वो एक दिन मिल जाते हैं। जैसे सपना, मुझे यहाँ सपना ही लगता है अभी भी कि जब मुझे परमात्मा के दर्शन हुए तो ऐसे लगा कि मैं तो देख भी नहीं पाई उनको कि सचमुच में ऐसे ही होते हैं परमात्मा। उनके एक आशीर्वाद से, एक स्पर्श आशीर्वाद से ऐसे लगा मैं पता नहीं मेरा जीवन बदल गया, मैं इंसान बनने के लायक हो गई। और घर की हालत तो मानो स्वर्ग हो गया, क्योंकि पहले उदाहरण ही मेरे लिए यही है कि मेरे राक्षस जैसे भाई साहब बदलकर इतने दयालु और इतने धार्मिक, इतने आस्थावान, इतने इंसान बन गए। और उनकी हालत, आर्थिक उन्नति भी बिल्कुल खराब थी तो सुधर कर बहुत अच्छी हो गई। दुकान भी छोटा सा था लेकिन उसमें इतनी आमदनी हो गई, तो मुझे विवश होना पड़ा। और मुझे भी घर में जो मेरे पति को पाइल्स और पेट के कुछ शिकायत थे। वो तो बिल्कुल ही यहाँ आने के आशीर्वाद, एक आशीर्वाद के बाद ही वो आज तक, आज के दिन तक कोई पता पता नहीं है। उस दवाई उन्होंने नहीं ले रखा है और मुझे और मेरे बच्चे वैसे इन लोगों तो बीमारी की तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो मानसिक बीमारी होती है अंदर से आत्मा में कि ऐसे कि भगवान नहीं है, कोई दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब भूल गया और परमात्मा है, सचमुच में है और हमारे सामने ही है, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं है और कोशिश ही नहीं करते हैं। वही मंदिर, वही पत्थर, उसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, सच साधना नहीं करते हैं। और लेकिन जब संत सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज के श्री चरणों में आए तब पता चला कि साधना क्या होती है और पूजा क्या होती है और भगवान क्या होती है। घर में कला नहीं है, कलेश नहीं है, झूठ नहीं है, बच्चे एक झूठ बोलने के लिए तरह डर जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान है, नहीं नहीं ऐसे। और जो बच्चे दिन भर टीवी, कार्टून, फिल्म, वीडियो गेम देखकर नहीं थकते थे, वो आज दिन भर टीवी देखते हैं तो परमात्मा की सत्संग देखते हैं और गुनगुनाते हैं तो शब्द मानी होते हैं उनके मुंह में। और मेरे बच्चे के भी स्कूल के परसेंटेज बढ़ गए हैं, वो लोग एग्जाम छोड़ छोड़ कर यहाँ आ जाते हैं और वापिस जाकर मार्क्स देखते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर भी वो हाईएस्ट मार्क्स में मेरा बेटा ने भी करके दिखाया है, ये भी प्रूव है। और पता नहीं अंदर से अंतर आत्मा से हमें लग रहा है कि हम लोग ने सब कुछ पा लिया, शांति। एक इंसान को संसार में सबसे ज्यादा होती है आत्मा शांति, तो मुझे लगता है आत्मा शांति और वैसे भी आर्थिक शांति ये सब तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के शरण में आने के बाद सब कुछ चला जाता है और सब कुछ मिलता ही जाता है, लाभ यही हुआ है मुझे।
बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भक्त समाज पूर्ण भाई बहन, माता पिता जो भी हैं, आज की शिक्षित समाज जो किसी को भी भटकाकर भुलाकर कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान गंगा पुस्तक है, देखे पढ़े और साक्षात परमात्मा है परवाला आश्रम में आ जाए, देरी ना करें, आपने आत्मकल्याण कराए, दुख रोग शोक भोग ये तो ठीक होने ही होने हैं, क्यों इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो कुछ ना करके दिखा सके, वो चमत्कार कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं और उन्होंने कर दिखाया है। मैं अपने मुंह से नहीं करना कहना चाहती हूँ सब बातें, और खुद आके देखें, समझें और अनुभव करें और अपने जिंदगी में लाभ उठाएं, वरना सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ नहीं ले जाएगा। और मैं चाहती हूँ यहाँ आकर दुख सुख समृद्धि आरोग्यता के साथ साथ सतलोक गमन की भी प्राप्ति करें, सच्चा है
जी। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
भारत दास।
भारत दास जी कहाँ से आए आप?
विकास कुंज लोनी गाजियाबाद यूपी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे।
तो जो भक्ति आप ब्रह्मा विष्णु महेश की करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था?
हमें लाभ कुछ नहीं मिला, हानि मिली, ज्यादा ज्यादा लाभ भी नहीं मिला, हानि मिली हमें। मैं 6 साल का था जब मुझे मैंने एक बर्थडे पे अपनी पार्टी खरी थी, उसके बाद अगले दिन ही मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे, फिर मेरे दौरे पड़ने लगे थे, मेरे पापा भी मेरे से परेशान हो गए थे कि मर ही जाए तो अच्छा ही है।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
हमारे इधर एक भगत जी है रामपाल दास, उन्होंने मेरे पापा को समझाया, वो पापा जी आए मेरे, फिर पापा जी हमें लेके गए, फिर हमने यहाँ से नाम लिया।
संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
नाम लेने के बाद मुझे लाभ हुआ, मेरी जो बीमारी थी वो मेरी कम हो गई है, मेरे को बीमारी जो है वो मेरी अब एकदम मैं स्वस्थ रहता हूँ, ज्यादा मेरे को दोनों नहीं पड़ते, मैं एकदम स्वस्थ हूँ।
तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतलोक बरवाड़ा आश्रम में आइए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए
जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।